ओम शांति।
सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की, वह भी बाप के साथ साथ अकेले नहीं, तो क्यों फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है, जॉब का फिक्र, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है, क्योंकि जानते हो हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना? पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहां निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है? या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं, क्योंकि कल्प कल्प के विजयी है और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी है? इतना निश्चय है? कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे? तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हैं। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी देख के मुस्कुराते हैं और क्या करते हैं,
हर्षित होते हैं,
हर्षित होते हैं। रत्नों को लेकर सीधा दिल की डब्बी में रखते थे, मस्तक के मणि में लगाते, अपने गले के हार में लगा देते, नयनों में समा देते और क्या करते, माला जपते रहते वतन में बैठ कर। काम ही नहीं है दूसरा। बहुत बड़ी माला है तो टाइम से बैठ कर
एक एक रतन की रंगत और
शोभा, रंगत और शोभा देखकर खुद ही खुश होते रहते, वाह क्या बनाया, कौन नहीं है जिसने इनको बनाया। अपने को आपको शाबाशी देते रहते हैं, वाह कमाल है मेरी भी, बारे में क्या बनाया मैंने। वाह बच्चे वाह कहते कि बारे में कहते। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते रहते, ये खुशी है ना? बहुत मजे में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की, और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक हो। ये था सेकंड ग्रुप, छोटा ग्रुप, छोटा ग्रुप है वाक्य छोटे बाबा के माँ बाप की। तो क्या कह रहे, सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हैं, फिक्र चिंता या थोड़ा थोड़ा फिक्र है?
एक ही चिंता बाप के साथ रहने,
बस ये की चिंता, बाकी सारी चिंता है
वही।
क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी के फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की, वह भी बाप के साथ साथ अकेले नहीं, वो साथ साथ है। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हम अकेले हैं? इसी की चिंता है, वो साथ है पर फिर भी लगता है अकेले, ऐसा क्यों? वो तो बोलता है मैं हूँ और हमको दिखता नहीं अभी,
जैसा बनकर नहीं रहते।
अच्छा, उसके जैसा बनकर नहीं रहते,
मन बुद्धि और तरफ जाती तो साथ
टूट नहीं, वो तो फिर भी साथ है ही। वो तो कहता है मैं सदा हूँ, वो तुमको दिखता नहीं, आत्माभिमानी नहीं बनते करके
जन्म
जन्म से। इसके लिए ये दिखता नहीं क्योंकि ये अदृश्य है। पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, उसको ना पग है ना कान है फिर भी सुनता है फिर भी चलता है, इसके लिए दिखता नहीं। वो है ना कविता, बड़ी फेमस कविता है ना, कि जिसमें एक व्यक्ति अकेले चल रहा है, नहीं वो सागर के किनारे से चल रहा है रेती पर, तो भगवान कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो भी देखता है बरबर साथ है, क्योंकि चार पद चिन्ह दिखते हैं उसके दो और भगवान के दो, जब भी चल रहा है उसके दो, पीछे मुड़ के देखता है तो उसके दो है, भगवान के भी दो है, तो वो निश्चिंत रहता है कि परमात्मा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ सब चल रहा है। और थोड़ी देर में आंधी और तूफान आ जाता है तो उसका सारा इधर उधर हो जाता है सामान, उस आंधी तूफान के क्षण में वो देखता है कि बस दो ही पद चिन्ह, मतलब उसके ही बस एक पैर है बस, और दूसरे है ही नहीं। और फिर थोड़ी देर के बाद आंधी तूफान जब रुकता है तो भगवान को उलाना देता है कि जब शांति थी तब तो तुम साथ थे, और जब अशांति आई जीवन में तब कहाँ चले गए थे, अब तो थे ही नहीं। तो जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जीवन में तब तुम रहते ही नहीं। क्या कहा भगवान ने, हाँ वो पद चिन्ह तुम्हारे नहीं, मैं तो तुमको अपने कंधे पर उठाकर ले चल रहा था तब तुम अगर अकेले होते तो पता नहीं कहाँ गए होते, उड़ गए होते, वो तो मैं तुमको अपने कंधे पर बिठाकर चल रहा था। तो बाबा कहते हैं वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं है, तो क्या फिक्र कल क्या होगा, ये फिक्र है भविष्य की, फिक्र भविष्य की चिंता। कौन कौन सी चिंता है ब्राह्मणों को भविष्य की, ब्राह्मणों की चिंता देवेंद्र भाई क्या चिंता है ब्राह्मणों को, क्या है
तमाम चिंता,
कौन सी तमाम चिंता है जैसे ये तो एक स्पेशल चिंता है, पर ये अच्छी चिंता है, थोड़ी साकार पॉजिटिव अच्छी थोड़ी सत्य प्रधान चिंता है कि मेरे से आगे कोई ना जाए, इसके लिए मैं आगे रहूं किसमें पर ज्ञान योग में, हाँ बाकी नहीं नहीं तो दूसरे में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
बाबा तो बोलता है एक दो से आगे,
वो एक दो से आगे बड़ा दुह्य वाक्य, क्या अर्थ है इसका समझ में नहीं आता, एक दो से आगे है सब, वो उससे आगे और वो दूसरे आगे, नहीं एक दो का आगे बड़ा दूसरा, ये बाबा का जो वाक्य है ना बाप दादा देखते हर एक दो से आगे है, इसका क्या अर्थ है,
कोई पीछे नहीं है,
पीछे नहीं है मतलब आगे कौन है फिर,
जिसका नाम लो वो आगे,
एक दो से आगे,
पहले आप पहले आप
पहले आप पहले आप। तो ब्राह्मणों को चिंता कौन सी है पूर्णिमा बहन,
चिंता उनकी चिंता है
कोई भी नहीं, ऐसा मत बोलो
बस निरंतर कमाई,
बाबा से मिलन में है ये चिंता, ये तो अच्छी चिंता है पॉजिटिव वाली, मैं निगेटिव वाली बोल रहा हूँ थोड़ी, जिसमें भय है जिसमें असुरक्षा है वो चिंता है, बुढ़ापे में क्या होगा, पैसा जो दुनिया में कोई रिटायर होता है तो उसका एक ही आधार होता है पेंशन या बैंक बैलेंस, क्योंकि कोई पूछता नहीं है फिर बाद में, ऐसा संसार में है, इसके लिए अपने भविष्य को सिक्योर किया जाता है वहां पर। और नहीं वो पॉजिटिव है, निगेटिव एक तो बुढ़ापे में क्या होगा, कोई सहारा होगा या नहीं होगा, कोई मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा,
हम तक ध्यान में चल पाऊंगा या नहीं
चिंता है, चलो वो भी एक चिंता है, चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, नहीं मैं तो चाहिए, चिंता कम रहती है एक बार चल पड़े इस मार्ग पे तो चल पड़ते, निगेटिव वाली चिंता एक तो बुढ़ापा, दूसरी बीमारी, तीसरा एकदम नहीं, वो चिंता कम है ब्राह्मणों, वो तो है ही, पवित्रता को मार्ग अपना लिया चल पड़े, ज्ञान में आ गए चल पड़े, निगेटिव एक तो बुढ़ापा में क्या होगा, बीमारी में क्या होगा, या कोई विपदा आ गई तो मदद कोई करेगा कि नहीं करेगा, समय पर सहयोग समय पर मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी चिंता, पता नहीं ये लोग मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इस प्रकार की चिंता, या फिर हाँ दूसरे अगर कोई दोष कर मेरे ऊपर हो जाए दोषारोपण, तो उससे कोई मेरी मदद करेगा, ये मदद की बात आ गई वहां पर, मदद भी कब कब, फिर मदद और सहयोग कब कब, अगर किसी ने दोष लगा दिया तुमने ये किया है तो उससे हम उस दोष से मुक्त हो पाएंगे या नहीं, कोई मेरी मदद करेगा कि नहीं, या फिर अन्याय हो जाए, अन्याय होता है ना कभी कभी ऐसे सोचते हैं, मतलब ड्रामा में तो अन्याय हो नहीं सकता, ड्रामा न्यायकारी है, ब्राह्मण सोचते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ,
मेरी कोई सुनता नहीं है,
हम राइट है पर हमारी सुनता नहीं है कोई, कोई भी नहीं सुनते, बड़े को भी बता दिया, बाबा को तो, बाबा तो सुनता ही नहीं, छोड़ो, और बड़े भी नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनता, उसकी चिंता, वो समय क्या होगा। ये एक अलग प्रकार, ये सब निगेटिव वाली चिंता है, वो पॉजिटिव चिंता तो होनी चाहिए। कौन सी
जाए तो फिर कहाँ जाए,
जाए तो कहाँ जाए, मार्ग ही नहीं है। जी बाबा ने कहा ना उस दिन, जीवन से तंग आ जाते हैं, लाइफ से तंग नहीं होना, हो जाते ना, तो लौकिक ना अलौकिक। अभी वो मार्ग छोड़ दिया, इधर भी गड़बड़ हो गई, अभी कहाँ जाए।
अच्छा
भक्ति भी नहीं कर सकते, ना तो ज्ञान में चल सकते, ना तो लौकिक जा सकते, ना यहाँ रह सकते, वो क्या त्रिशंकु की तरह बीच में अटक जाते हैं। और कौन सी चिंता है, और भी कोई चिंता है इस तरह की, विषमता है, किसी को सब कुछ मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों?
दुश्मन ना बन जाए,
आपको दुश्मन ना बन जाए। और एक चिंता, कोई ये ना कर दे जादू टोना, आजकल बहुत चल रहा है ना यज्ञ में, कोई आगे जाता दिखता है कि कुछ कर देते, कोई ज्यादा ही ज्ञान में बढ़ रहा है उसको भी कर देते, ये सब करते हैं टोना टोट कर।
बच्चों को लगता नहीं,
नहीं लगता, वो भी है, पर जो कमजोर है, जो उसको स्वीकार करते हैं, जो उसको मानते हैं, जिनको है लगता है, उनको हो जाएगा। जो बहुत शक्तिशाली है, ज्ञानी और योगी है, उनको ये सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं, परंतु थोड़ा जिनको विश्वास है उन बातों में कि वो होता है, ऐसा है, वैसा है। सूरज भाई तो अपने क्लासेस में काफी बताते हैं,
इविल सोल घुस जाता है,
इविल सोल, ये सब भी चिंता है एक रीति से, इविल सोल। वो इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू हैव लेमन मेक लेमोनेड, अगर आपके पास नींबू है तो नींबू का पानी बना के पी लो, नींबू जूस क्या कहते हैं, नींबू रस, नींबू पानी, लेमन लेमोनेड कहते हैं इंग्लिश में। इफ यू हैव ए लेमन मेक लेमोनेड, नींबू है तो बनाओ, अभी उसमें कहाँ से, उसमें थोड़ा सा हल्दी रख दिया और कुछ मिर्ची विर्ची रख दिया, सोचो सुबह सुबह हम उठे और हमारे कमरे के दरवाजे पर ये दिखा तो पूर्णिमा बहन क्या सोचोगे, कुछ नहीं ना, हटाओ इसको, ये थोड़ा तो सोचोगे क्या है ये, कौन है मेरे जान के पीछे, कोई तो है यहाँ पर, शुभ चिंतक। तो ये भी एक चिंता है, ये भी एक है कि ये ना हो जाए। फिर प्राकृतिक आपदाओं का भय, प्राकृतिक आपदाएं अगर आ गई तो क्या होगा हमारा। फिर अकाल मृत्यु का भय, हरेक को ये चिंता, ये तो अच्छी सत्वप्रधान चिंता है कि हम मधुबन में शरीर छोड़े, अच्छी चिंता है, पर यहाँ से 2 दिन के लिए गए और वही मृत्यु हो गई, ऐसे ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रह रहे मतलब यही होगी, हम रहे यहाँ रहे 1 दिन के लिए कहीं गए थे, बस वही कुछ हो, हमारा किस किस कैसे हिसाब किताब है, चाहे एक्सीडेंट से भी हो सकती है।
हमारे मधुबन निवासी भाई गाँव गया था, पानी नहीं था बाथरूम में, तो ट्रेन के ऊपर चढ़ गई, छत के ऊपर, वहाँ हाई वोल्टेज था, नीचे गिर गया, बहुत साइज जल गया, 5-6 महीने लगा,
बड़े हिसाब किताब। दूसरा वो हमारे प्रेम भाई
डॉक्टर
हॉस्पिटल गए, किससे हिसाब किताब, जानवर से, गाय कौन सी, बाहर की भी नहीं खुद की। तो ये भी एक है कि शरीर यहाँ से गए और अकाले मृत्यु, क्योंकि मृत्यु का तो कोई भरोसा ही नहीं है ना, हम चाहे उसको कुछ भी रोके, हाँ मृत्यु तो ऐसी है जैसे किसी राजा सोया एक दिन रात में और उसको स्वप्न आया और मृत्यु ने उसे कहा कि कल शाम को 8 बजे में तुम्हें लेने आऊंगी। तो उसने सुबह अपनी सभा में कहा, सारे ज्योतिषियों को बुलाया सभा में और बताया कि मुझे रात में ऐसा ऐसा स्वप्न आया, क्या किया जाए। तो ज्योतिषी भी महान पंडित थे, बोले बिल्कुल इसको हल्का मत लेना, अभी से तुम निकल जाओ, जो तुम्हारा सबसे तेज घोड़ा होगा उसको ले लो और निकलो यहाँ से और भागो, बस अब कोई मार्ग ही नहीं है तुम्हारे पास, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मृत्यु ने कहा है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी शाम को 8 बजे। तो अभी समय बहुत है, अभी तो सुबह के 6 बजे, अभी भी तुम निकल जाओ तो वो अभी मृत्यु से तो बचना चाहेगा ना कोई व्यक्ति, अगर उसको बता दिया जाए कि मृत्यु आने वाली है यहाँ पर
तो सब
तो कुछ तो हो सकता है, व्यक्ति कुछ तो विकल्प ढूंढता ही है ना, ऐसे कोई शांति थोड़ी बैठता है। पता चल गया कि भाई मृत्यु आने वाली है, कुछ तो करेगा या शांत से बैठे रहेगा कि भाई आओ और आलिंगन करेगा मृत्यु का, बहुत अच्छा तब से तुम्हारी राह देख रहा है। व्यक्ति अपना जीवन छोड़ना चाहता है, जीवन के प्रति जो मोह है वो कभी छूटता है क्या? वो लेता है सबसे तेज घोड़ा और जो भागता है इतना तेजी से कि कभी जीवन में नहीं भागा होगा, और न जाने कितने कोसों दूर तक चला जाता है। बीच में जंगल आता है, जंगल को पार कर चले जाता है, बीच में खाई को पार कर चले जाता है, कितने गांव को पार कर चले जाता है। अंधेरी मतलब अंधेरा होने लगता है, शाम होने लगता है, उसको लगता है मैं न जाने बहुत दूर कितने राज्य को लांग कर किसी एक अज्ञात स्थान पर पहुंच जाता है, रेगिस्तान में, जहां पर एक छोटा सा उसको घर दिखता है, उसको लगता है बस ये एक स्थान है जहां मैं रहूंगा, यहां तक तो मृत्यु आ नहीं सकेगी। वहां अपना घोड़ा बांधता है, उतरता है घोड़े से, बांधता है और किसी के हाथ उसके कंधे पर, वो दिखता है पीछे कौन, तो बोलता है मैं मृत्यु, तो बोलते तुम, तो बोलते हाँ मुझे यकीन नहीं था कि तुम इस स्थान पर पहुंच सकोगे, क्योंकि मैंने तो यहीं का तुम्हारा निश्चित किया था यहाँ आने का, पर मुझे नहीं लगा था कि वो स्थान से तुम ये स्थान तक पहुंच सकोगे, मैं तो यहाँ कब से तुम्हारी इंतजार कर रही हूँ, पर अभी समय निकल रहा जा रहा था, बस 5 मिनट बाकी थे पर तुम पहुंच गए बराबर, तुम्हारा इंतजार मैं कर रही थी। मेरे को तो बिल्कुल मैंने आशा ही छोड़ दी थी कि तुम आओगे, पर तुम बराबर पहुंच गए, चलो।
नियति, इसको बोलते नियति
का खेल है,
नियति
इसको, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। तो हर एक व्यक्ति को ये चिंता होती कि मेरी मृत्यु, हम अगर चाहे कि मेरी मृत्यु आराम से हो जाए, नींद में हो जाए, बाबा के कमरे में हो जाए, शांति स्तंभ में हो जाए, ऐसा हो सकता है? क्या कहे कोई कोई लोग लिख के जाते हैं, अभी माउंट में भी 3-4-5-6 ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे कि जो कभी भी जा सकते हैं, टाइम बॉम्ब है उनके हार्ट में, सारे ब्लॉकेजेस है, ऑपरेशन नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते, एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, बहुत सारी बीमारियां है। तो उन्होंने तो कह के रखा है कि भाई हमको लेके नहीं जाना, या फिर लिख के रखा है कि वेंटिलेटर पे नहीं डालना है, आईसीयू में एडमिट नहीं करना है। इसको कंसेंट कहा जाता है, DNR कंसेंट, डू नॉट रिससिटेट, कुछ भी हो जाए, उनके रिलेटिव्स ने भी ये कह के रखा है, कुछ भी हो जाए यहां से कहीं शिफ्ट नहीं करना, एम्बुलेंस में कहीं शिफ्ट नहीं करना, ऐसे कई लोगों ने करके रखा है। एक तो ऐसा था, एक तो वो ही था कि मुझे तो हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल में ही मरना है, वो जब कुछ भी हो गया तो यहाँ लेके आना, मैं यही मरूंगा। उसको लेके आया और उसने शरीर छोड़ा, ये उसकी अंतिम इच्छा थी, तो चलो वो भी पूरी होगी। पर हमारी मृत्यु कैसे आएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है।
लोगों को पता चल जाता है,
कई लोगों को पता चलता है, बहुत कम लोग है ऐसे, बहुत कम कि जिनको पता चल जाता है कि मैं जाऊंगी। जैसे बहुत 3 या 4 साल पहले मॉरिशस से एक बहन आई थी ना, जहाँ यहाँ से लेके गए थे, अचानक तबियत बिगड़ गई थी, बाबा से मिल के आई, तबियत बिगड़ गई, हॉस्पिटल में लेके गए, तो उसने 5-6 दिन वेंटिलेटर पर थी और फिर उसकी मृत्यु हुई। तो उसने उधर से मॉरिशस से निकलते समय कहा था कि मैं अभी जा रही हूँ, अपने बेटों को कह के रखा था कि मैं मधुबन जा रही हूँ पर वापस नहीं आऊंगी, ये उसका संकल्प था। और वो जब आई तो एकदम चलती फिरती आई, ऐसी कोई उसको बीमारी भी नहीं, यहाँ आकर पता नहीं उसको एक के बाद कुछ तो हो गया, अचानक बेहोश हो गई, देखा सिटी स्कैन किया तो ब्रेन में सूजन और क्या 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 निकल गया, 7 दिन वेंटिलेटर पे, फिर अरेस्ट हुआ और फिर चली छोड़। तो पर उसने कह के गई थी वहां से कि मैं जा रही हूँ पर वापस नहीं आऊंगी, बड़ा संकल्प पावरफुल था। ऐसे कुछ केसेस में हो सकता है, परंतु सामान्यतः ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी मृत्यु कहाँ होगी, किस कारण से होगी, किस समय होगी, ये तीनों चीजें फिक्स्ड है पर हमें पता नहीं। हर एक चाहता है कि शांति से हो, हर एक चाहता है मैं किसी की सेवा ना लूं, और जो हमेशा कहता रहता है मैं सेवा नहीं लूंगा, उसको तो सबसे ज्यादा सेवा लेनी पड़ती है। ऐसे भी है कुछ डॉक्टर गिरीश पटेल ने एक बार बताया था ना कि गुजरात की एक युगल है, वो जो थी वो हमेशा कहती रहती थी कि मैं किसी की सेवा नहीं लूंगी, मुझे तो बस ऐसे ही जाना है। पर वो जब बीमार पड़ी तो 6 महीने तक चला उसका, उसके चारों बेटे उसकी सेवा में दिन रात। तो वो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हर एक चाहता है कि शांति से, बिल्कुल जैसे मक्खन से बाल, वैसे संसार से निकल जाए, ऐसा हमारे हाथ में नहीं। तो ये भी एक चिंता है कि मृत्यु किस विधि से मृत्यु हो, अच्छा किस समय हो, हमारे हाथ में अच्छा समय हो, जैसे गुरुवार को हो और अमृत वेला हो, और एक चाहेगा ना बाबा के दिन हो, या वो बाबा आए हुए हैं और वो उस हॉल में हो जाए बाबा के सामने और हम ऐसे देखते देखते शरीर छोड़ दे, या बाबा ने हाथ दिया, ये कल्पनाएं हैं बहुत सारी कैसी पर ये कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। अमृत वेला गुरुवार के दिन सुबह 4 बजे ना अच्छा समय है, और इधर ही बिना हॉस्पिटल लेके जाए
सब सामने बैठे हुए योग करते
और उस देव करते करते, एक भाई का ऐसे उदाहरण है ना कोई राजस्थान पे कि बाबा के कमरे में सुबह सुबह जाता था, मुरली से पहले 6:30 से 7 तक योग करता था, 6:30 बजे बैठा और बस शरीर छोड़ दिया, कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं कहीं लेके जाने का। ये तो बड़ी पावरफुल है तो बाबा कहते क्या कोई फिक्र है कल क्या होगा, यह फिक्र है, जॉब का फिक्र है, सेवाओं का फिक्र, अगर हम चले गए तो हमारे डिपार्टमेंट का क्या होगा, हम चले गए तो ये सेवा कौन करेगा, कोई तो दिख ही नहीं रहा है, आज तक जितने है कोई भी ठीक नहीं था, हम के अलावा दूसरा कोई था ही नहीं है सेवा, उसकी भी चिंता, हाँ हमारा कोई कॉम्पिटिटर जन्म ले लिया, जैसे दुकानदार होता है ना, एक की दुकान इधर बाजू में दूसरा दुकानदार आ गया तो इसको चिंता हो जाती है, वैसे इधर भी कोई योग्य व्यक्ति आ जाए तो वो भी एक चिंता है कि अभी उसको सब मानने लगे, हमारे पास तो कोई आता नहीं, हमको कोई मानता नहीं, ये सूक्ष्म चिंता है ब्राह्मण जीवन की, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र, क्योंकि जानते हो हमारे लिए जो भी होगा ये तो हमने निगेटिव पॉइंट्स वर्णन किए पर इनका भी ज्ञान रहना चाहिए, बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, संपन्न बनने की चिंता, सेवा करने की चिंता, ये होना रहे वो होना रहे, उंगलियों में आता है ये फिक्र रहे तुमको, याद करने की फिक्र, स्वर्ग जाने की फिक्र, बाप से मिलन मनाने की फिक्र, ये सब तो अच्छी बात है, निश्चय है ना, पक्का निश्चय है या हिलता है कभी, जहां निश्चय पक्का है वह निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, जहां पर भी हमारी मृत्यु होगी हमारी स्थिति अच्छी ही होगी, जहां हम होंगे वही मधुबन होगा, मधुबन में हमारी मृत्यु नहीं, जहां हम होंगे वो स्थान ही मधुबन हो जाएगा, ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है, या कभी सोचते हो पता नहीं होगी कि नहीं, संदिग्ध है विजय, निश्चिंत विजय है ही हमारी, क्योंकि कल्प कल्प के विजयी है और सदा रहेंगे, ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो, इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी है, इतना निश्चय है कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे, तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजय रत्न है, ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते, ऐसे रत्न जिनको बाप दादा भी देखकर खुश होते हैं, अपने दिल के डिब्बे में रखते हैं, मस्तक का मणि बनाते हैं, गले का हार बनाते हैं, नैनों में समाते हैं, अपने दिल तख्त पर रखते हैं, सकाश देते हैं रत्नों को, करंट देते हैं, उनकी लाइट और बढ़ाते हैं, तो ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को भगवान स्वयं याद करता है, भगवान के मन के की माला है, ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की, और मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक, किस बात की मुबारक दे रहे बाबा, दो, पहले तो इस जन्म की मुबारक, नया जन्म लिया है तुमने, कैसा जन्म लिया है वो भी द्विज, अलौकिक जन्म है तुम्हारा, ये अलौकिक जन्म, ये कोई भौतिक जन्म नहीं, अभौतिक, ये कोई पार्थिव जन्म नहीं है, शारीरिक जन्म नहीं है, ये अपार्थिव अशारीरिक जन्म है, अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है, श्रेष्ठ जन्म, नया जन्म हुआ है, और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक, मधुबन घर में पहुंचने की, तो मधुबन की महिमा है स्थान की, तो तुम्हारे स्थिति की भी महिमा होनी चाहिए, बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि बस स्थान की महिमा जितनी उतनी स्थिति की होनी चाहिए, दूसरे मधुबन को याद करके, दूर वाले मधुबन को याद कर समर्थ बन जाते हैं, तो यहाँ वालों की क्या हाल, कब पूछा बाबा ने, वहां भक्त लोग दिव्य भूमि के दर्शन मात्र के लिए तड़पते हो, तो ऐसे दर्शनीय मूर्त हो, ये महान स्थान है, ये यादगार स्थान है, ये तीर्थ स्थान है, समर्थ भूमि है। समर्थ भूमि में याद करते ही व्यर्थ समाप्त, समर्थ बन जाते हो और सर्व प्राप्तियों की खान।
संगठन का वो है,
किला है ये,
होता है वैसे।
जैसे टोटल, क्या कहा, टोटल नहीं, कौन सा शब्द था वो, जैसे एंटायर, इन टोटलिटी में स्वर्ग कहते हो इसको।
हाँ, स्वर्ग,
टोटल, टोटल, टोटल कौन सा शब्द था, जैसे टोटल, ओवरऑल टोटल, जैसे इसको स्वर्ग वातावरण है, उसी तरह व्यक्तिगत स्तर पर भी हर एक स्वर्ग का या सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो दूसरे जो आ रहे हैं उनको।
स्वर्ग माना सर्व प्राप्तियों का,
जैसे स्वर्ग मधुबन को स्वर्ग कहते हैं, टोटल जैसे वो अनुभव है, वैसे व्यक्तिगत लेवल पर भी स्वर्ग का सबको अनुभव। कौन सा शब्द है, टोटल है, टोटलिटी है, एंटायर है, एक तो शब्द है, नहीं वो नहीं, वो दूसरा, वो संघ का, वो प्रभाव का, वायुमंडल का, मधुबन का, वो सब लास्ट लाइन
टोटली
है, जैसे टोटल वायुमंडल में स्वर्ग है, टोटली
किसी से भी मिले तो उसको
अनुभव हो, तो
टोटल वायुमंडल में स्वर्ग, जैसे टोटल वायुमंडल में स्वर्ग का अनुभव करते वैसे व्यक्ति वगत भी स्वर्ग वाले अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव कर,
ऐसा अनुभव जैसे स्वर्ग का यहाँ वातावरण में अनुभव, ऐसा व्यक्तिगत स्तर पर भी। तो मधुबन में पहुंचने की मुबारक, मधुबन में कौन पहुंच सकता है, कौन पहुंचाता है मधुबन में ढकेल ढकेल कर, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनको कौन पहुंचा रहा है यहाँ, एक तो भाग्य और
पिता ला रहा है,
भगवान ला रहा है और
भाग्य
तो हो गया, भाग्य मधुबन को
पुण्य,
उसके जो पुण्य है उसको ढकेल ढकेल के ढकेल ढकेल के ढकेल ढकेल के यहाँ पहुंचाते हैं। हर एक व्यक्ति का पुण्य अगर बहुत ज्यादा है तो इस भूमि पर आ सकता है, बिना पुण्य के इस भूमि पर कदम नहीं रखा जा सकता, वो जो गेट है उसके अंदर नहीं घुस सकता है कोई बिना पुण्य के, वहाँ क्राइटेरिया है, बहुत सारे पुण्य चाहिए, किसी का रिजर्वेशन हो जाता है, टिकट बन जाता है, सब कुछ हो जाता है टाइम पे, और अभी 11 बजे की ट्रेन है और 10 बजे पोस्टपोन, कैंसिल, ये क्या है, इसको क्या कहे, बहनों को पूछो ये अनुभव। फिर उसकी जगह वो आ जाता है जो आने वाला ही नहीं था, जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, वो उसके नाम पे आ जाता है, ऐसे भी होता है, वो उसके नाम पे उसको लेके आते हैं, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया किया किसने, पर उसको दिव्य अलौकिक अनुभव हो रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उसको अंदर में उसके, जब भी कभी वैसे ही है क्या, तो वो पता नहीं उसको क्या क्या हो रहा है, वो मतलब वो कोई बोल भी नहीं पा रहा है, वो उसको ऐसे ऐसे अनुभव हो रहा है, उसको सारी कल्प पहले की स्मृतियां जाग रही है, इस भूमि से उसको सुगंध आ रही है, इस वातावरण में उसको अलौकिक दिव्यता का अनुभव हो रहा है, सब फरिश्ते दिख रहे हैं, बाबा के कमरे में बैठ रहा है, सब उठ के जा रहे हैं, वो बैठा के बैठा ही है, उसको पता नहीं कितना मालूम क्या क्या हो रहा है, तो ऐसा होता है। तो मधुबन में पहुंचने की ही मुबारक बाबा दे रहे, केवल पहुंचने के, रखते ही गीत है ना, रखते ही कदम जहां पर मिल जाए प्रभु वहां पर, रखते ही कदम जहां पर गीत है ना, मिल जाए शिव का हो जहां पर मिलन, यह है प्यारा प्यारा मधुबन। अच्छा, मिशन है।